इब्रानियों का पत्र इब्रानियों अध्याय एक। प्राचीन काल में परमेश्वर ने पूर्वजों से अलग अलग समयों में और अलग अलग तरीकों से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। उन्होंने इन दिनों के आखिर में हमसे बेटे के द्वारा बातें की, जिन्हें उन्होंने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और जिनके द्वारा परमेश्वर ने सारी सृष्टि रची है। वह परमेश्वर की महिमा का तेज और उनके व्यक्तित्व का स्पष्ट रूप हैं। वही सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के शब्द से संभालते हैं। वही पापों, भूलचूक, अपराधों को धोकर आदर और अधिकार की जगह पर महामहिम की दाहिने जा बैठे। वह स्वर्गदूतों से उतने ही बेहतर ठहरे जितना उन्होंने उनसे बड़े पद का वारिस होकर बेहतर नाम पाया, क्योंकि स्वर्गदूतों में से परमेश्वर ने कब किसी से कहा कि
तुम मेरे बेटे हो, आज तुम मुझसे उत्पन्न हुए,
और फिर यह कि
मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा बेटा होगा।
और जब सर्वश्रेष्ठ को जगत में फिर लाते हैं तो कहते हैं कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उन्हें दंडवत करें, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहते हैं कि
वह अपने दूतों को आत्माएं और अपने सेवकों को आग की ज्वाला बनाते हैं,
परंतु बेटे से कहते हैं कि
हे परमेश्वर, आपका सिंहासन हमेशा बना रहेगा, आपके राज्य का राजदंड धार्मिकता का राजदंड है। आपने खराई से प्रेम और बुराई से बैर रखा, इसलिए परमेश्वर आपके परमेश्वर ने आपके साथियों से बढ़कर आनंद के तेल से आपको अभिषेक किया।
और यह कि
हे प्रभु, आदि में आपने पृथ्वी की नींव डाली और आसमान आपके हाथों की कारीगरी है। वे तो नाश हो जाएंगे परंतु आप बने रहेंगे, और वे सब कपड़ों के समान पुराने हो जाएंगे। आप उन्हें चादर के समान लपेटेंगे और वे बदल जाएंगे, लेकिन आप वही हैं और आप सदा बने रहेंगे।
और स्वर्गदूतों में से उन्होंने किससे कब कहा,
तुम अधिकार के साथ विराजमान रहो जब तक कि मैं तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे पैरों के नीचे की चौकी ना कर दूं।
क्या स्वर्गदूत देखभाल करने वाली आत्माएं नहीं, जो मुक्ति पाए हुए लोगों के लिए मदद करने को भेजी जाती हैं? इब्रानियों अध्याय दो। इसलिए चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी हैं और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि सुनी हुई बातों से बहक जाएं, क्योंकि जो बातें स्वर्गदूतों के द्वारा कही गई थी, यदि वे बनी रहीं और हर एक गुनाह और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसी बड़ी मुक्ति से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल यीशु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा पुष्टि की गई। साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों, अद्भुत कामों और अनेक तरह के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देते रहे। परमेश्वर ने उस आने वाले जगत को, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, स्वर्गदूतों के वश में ना किया, लेकिन किसी ने कहीं यह गवाही दी है कि इंसान क्या है कि आप उसकी सुधि लेते हैं, या इंसान क्या है कि आप उस पर निगाह करते हैं। आपने थोड़े समय के लिए यीशु को स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। आपने उनके सिर पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उन्हें अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। आपने सब कुछ उनके पांव के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि परमेश्वर ने सब कुछ यीशु के अधीन कर दिया, तो उन्होंने कुछ भी रख न छोड़ा जो यीशु के अधीन ना हो, परंतु हम अब तक सब कुछ उनके अधीन नहीं देखते, परंतु हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किए गए थे, मौत का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर की कृपा से हर एक मनुष्य के लिए मौत का स्वाद चखें। क्योंकि जिस परमेश्वर के लिए सब कुछ है और जिनके द्वारा सब कुछ है, उन्हें यही अच्छा लगा कि जब वे बहुत से बेटों को महिमा में पहुंचाएं, तो उनका मुक्ति देने वाला पूरा दुख उठाए, क्योंकि पवित्र करने वाला अर्थात यीशु और जो पवित्र किए जाते हैं अर्थात विश्वासी सब एक ही स्रोत से हैं। इसी कारण यीशु उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माते, किंतु कहते हैं कि
मैं आपका नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं आपका भजन गाऊंगा,
और फिर यह कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर
देखो मुझे और इन बच्चों को जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं।
इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के हिस्सेदार हुए हैं, तो वो आप भी उसमें सहभागी हुए, ताकि अपनी मौत के द्वारा उसे अर्थात शैतान को, जिसे मौत पर हक मिला था, कमजोर कर दे, और जितने मौत के डर के कारण जीवन भर गुलामी में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वे तो स्वर्गदूतों को नहीं लेकिन अब्राहम के वंश को संभालते हैं। इस कारण उनको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान हों, जिससे वे उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, एक दयालु और विश्वास योग्य महापुरोहित बन सकें, ताकि लोगों के अपराधों के बदले में प्रायश्चित करने के लिए मरें। वे उनकी भी मदद कर सकते हैं जिनकी परख होती है, क्योंकि उन्होंने भी परखे जाने के समय में दुख उठाया। इब्रानियों अध्याय 3। सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो ऊपरी बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महापुरोहित यीशु पर ध्यान करो, जिसे हम कबूल करते हैं। वो अपने नियुक्त करने वाले के लिए भरोसेमंद थे, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घराने में था, क्योंकि वो मूसा से इतना बढ़कर महिमा के लायक समझे गए हैं, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर पाता है। हर एक घर को कोई ना कोई बनाने वाला होता है, परंतु जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। मूसा उनके सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा, ताकि जिन बातों को बाद में बताया जाने वाला था उनकी गवाही दे। परंतु मसीह बेटे के समान उनके घर के अधिकारी हैं, और उनका घर हम हैं। अगर हम साहस में और अपनी आशा के आनंद में अंत तक मजबूती से स्थिर रहें। इसलिए जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा जंगल में विद्रोह के समय और परीक्षा के दिनों में इसराइलियों ने किया था, जहां तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे जांच कर परखा और 40 साल तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से नाराज था, और मैंने कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे रास्तों को नहीं पहचाना। तब मैंने गुस्से में आकर शपथ खाई कि वे मेरे आराम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हे भाइयों बहनों, सावधान रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवित परमेश्वर से दूर हट जाए। लेकिन जब तक इसे आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई व्यक्ति गुनाह के छल में आकर सख्त हो जाए, क्योंकि हम मसीह के साथ हिस्सेदार हुए हैं। यदि हम अपने शुरू के विश्वास से आखिर तक मजबूती से बने रहें, जैसा कि कहा जाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि गुस्सा दिलाने के समय इसराइलियों ने किया था। किन लोगों ने सुनकर गुस्सा दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? वह 40 साल तक किन लोगों से नाराज रहे? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने बलवा किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? उन्होंने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे आराम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उन्हीं से नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? इसलिए हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण दाखिल ना हो सके। इब्रानियों अध्याय 4। इसलिए जबकि परमेश्वर के आराम में प्रवेश करने का वायदा अब तक है, तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई व्यक्ति उस वायदे से चूक जाए। हमें उन्हीं की तरह खुशी का समाचार सुनाया गया है, लेकिन सुने हुए वचन से उन्हें कुछ फायदा न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हम जिन्होंने विश्वास किया है उस चैन में दाखिल होते हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा कि
मैंने अपने क्रोध में प्रतिज्ञा की कि वह मेरे आराम में प्रवेश करने न पाएंगे।
हालांकि सृष्टि की शुरुआत से पहले परमेश्वर के काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि सातवें दिन के विषय में कहीं इस तरह कहा है,
परमेश्वर ने सातवें दिन कुछ न बनाया क्योंकि छह दिनों में रचना का कार्य खत्म हुआ।
ये भी लिखा है कि
वे मेरे आराम में प्रवेश न कर पाएंगे।
तो जब ये बात बाकी है कि दूसरे और हैं जो उस आराम में प्रवेश करें, और जिन्हें उनका सुसमाचार पहले सुनाया गया उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया, तो फिर वो किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहते हैं, जैसे पहले कहा गया,
यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो तुम्हारे मन ढिठाई न दिखाएं।
और यदि यहोशू उन्हें आराम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। इसलिए ये जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का आराम बाकी है, क्योंकि जिसने उनके आराम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की तरह अपने कामों को खत्म किया है। इसलिए हम उस आराम में प्रवेश करने की पूरी कोशिश करें, ऐसा न हो कि कोई उन लोगों के समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, शक्तिशाली और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, आत्मा और प्राण को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की इच्छाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई भी वस्तु सृष्टिकर्ता से छिपी नहीं है, और ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो उनकी दृष्टि से छिपा हो, परंतु उनकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं, जिन्हें हमें लेखा देना होगा। इसलिए जब हमारे ऐसे महापुरोहित हैं जो स्वर्ग में दाखिल हो चुके हैं, अर्थात परमेश्वर के बेटे यीशु, तो आओ हम अपने विश्वास को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि हमारे ऐसे महापुरोहित नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारे साथ दुखी ना हो सकें, लेकिन वो सब बातों में हमारे समान परखे तो गए तो भी बेगुनाह निकले। इसलिए आओ हम उस सिंहासन के पास हिम्मत से पहुंचें, जहां कृपा मिलती है, ताकि जरूरत के वक्त हमें मदद मिल सके। इब्रानियों अध्याय 5। क्योंकि हर एक महापुरोहित इंसानों में से ही चुना जाता है, और इंसानों ही के लिए उन बातों के बारे में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है, कि भेंट और बलिदान गुनाहों के लिए चढ़ाया करे। ये महापुरोहित कम समझ रखने वालों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वे आप भी कमजोरी से घिरा है, और इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून की तरह परमेश्वर की तरफ से ठहराया ना जाए। वैसे ही मसीह ने भी महापुरोहित बनने का बड़ापन अपने आप से नहीं लिया, परंतु उन्हें परमेश्वर ने दिया, जिन्होंने उनसे कहा था कि
तुम मेरे बेटे हो, मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है।
वो दूसरी जगह में भी कहते हैं, आप मलकीसेदेक की तरह हमेशा के लिए पुरोहित हैं। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर परमेश्वर से, जो उसको मौत से बचा सकते थे, प्रार्थनाएं और विनतियां की, और उनके समर्पण के कारण उनकी सुनी गई। बेटा होने पर भी यीशु ने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। वह मजबूत बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल की मुक्ति का कारण हो गए, और उन्हें परमेश्वर की ओर से मलकीसेदेक की तरह महापुरोहित का पद मिला। इस विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं, जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो तुम्हें परमेश्वर के वचनों की मूल शिक्षा फिर से सिखाए। तुम ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अनाज के बदले अब तक दूध ही चाहिए। दूध नए विश्वासियों के लिए है जिन्हें परमेश्वर के रास्ते का अनुभव नहीं है, क्योंकि वे बच्चे हैं। लेकिन ठोस खाना सियानों के लिए है जिन्होंने अपने मनों को अभ्यास के द्वारा भले बुरे में भेद करने का ज्ञान हासिल किया है। इब्रानियों अध्याय 6। इसलिए आओ मसीह के बारे में शुरुआती शिक्षाओं के ऊपर बहस करना छोड़कर हम परिपूर्णता की ओर आगे बढ़ते जाएं और बुरे कामों से मुड़ने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मे और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और सनातन न्याय की बुनियाद फिर से ना डालें। और यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार सच्चाई जान ली है और जो स्वर्गिक वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर की उत्तम शिक्षा का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन बदलाव के लिए फिर नया बनाना असंभव है, क्योंकि वे परमेश्वर के बेटे को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और खुले रूप में उन पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो जमीन बरसात के पानी को जो इस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिनके द्वारा ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वे परमेश्वर से आशीष पाती है। परंतु यदि वे झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और सजा लायक है और उसका अंत जलाया जाना है। हे प्रियो, हालांकि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी बेहतर बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस मेहनत को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस तरह से दिखाया कि दूसरे पवित्र जनों की सेवा की और कर भी रहे हो। हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन आखिर तक पूरी आशा के लिए ऐसी ही समझदारी से काम ले, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ वरन उनको नमूना बनाओ जो विश्वास और धीरज के द्वारा वायदों के वारिस होते हैं। और परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा देते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ खा कर कहा,
मैं सचमुच तुम्हें बहुत आशीष दूंगा और तुम्हारी संतान को बढ़ाता जाऊंगा।
और इस तरह से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा के नतीजे को पाया। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ तरह से प्रकट करना चाहा कि उनकी मनसा बदल नहीं सकती, तो शपथ को बीच में लाए ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है हमारा दृढ़ता से ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने के लिए इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। यह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और मजबूत है और पर्दे के अंदर तक पहुंचाता है, जहां यीशु मलिकिसेदेक की तरह सदाकाल के महापुरोहित बनकर हमारे लिए अगुवे के रूप में दाखिल हो चुके हैं। इब्रानियों अध्याय 7। इस शालेम के राजा मलिकिसेदेक ने, जो परम प्रधान परमेश्वर के लिए सदा के लिए पुरोहित है, अब्राहम से भेंट करके उस समय उसे आशीष दी जब वह राजाओं को मारकर लौट रहा था। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दसवां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धार्मिकता का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है। इसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, ना ही इसके जीवन की शुरुआत है और ना ही जीवन का अंत है, फिर भी परमेश्वर के बेटे के स्वरूप में ठहराए जाने के कारण वह निरंतर पुरोहित बना रहता है। इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था जिसको कुल पिता अब्राहम ने अपनी अच्छी से अच्छी लूट के माल का दसवां अंश दिया। लेवी की संतान में से जो पुरोहित का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली थी कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, हालांकि वे अब्राहम ही की देह से जन्मे थे, व्यवस्था के अनुसार दसवां भाग लें। लेकिन उसने जो उनकी वंशावली में भी ना था अब्राहम से दसवां अंश लिया और उसे प्रतिज्ञाएं मिली थीं, उसे आशीष दी। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। यहाँ तो मरणहार मनुष्य दसवां अंश लेते हैं, परंतु वहां वही दसवां भाग लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो दसवां अंश लेता है अब्राहम में होकर दसवां हिस्सा दिया, क्योंकि जिस समय मलिकी सिदेक ने लेवी के पिता से मुलाकात की उस समय वह अपने पिता की देह में था। तब यदि लेवीय पुरोहित पद के द्वारा सिद्धता हो सकती है तो फिर क्या जरूरत थी कि दूसरा पुरोहित मलिकी सिदेक की तरह खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए, क्योंकि जब पुरोहितपन बदला गया है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती हैं कि वे दूसरे गोत्र का है जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो साफ है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है और इसी गोत्र के विषय में मूसा ने पुरोहितपन की कुछ चर्चा नहीं की। यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है क्योंकि मलिकी सिदिक के समान एक और ऐसा पुरोहित उत्पन्न होने वाला था जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं परंतु अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार ठहराया गया। तो हमारा दावा और भी साफ तरीके से प्रकट हो गया क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है कि
तुम मलिकी सिदक की तरह युगान युग पुरोहित हो।
क्योंकि पहली आज्ञा कमजोर और निष्फल होने के कारण खत्म हो गई, इसलिए कि यहूदी नियमों ने किसी बात को सिद्धता प्रदान नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशीष रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं, और इसलिए कि मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई। वो लोग तो बिना शपथ पुरोहित ठहराए गए परंतु यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया जिसने उनके बारे में कहा कि
प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएंगे कि युगान युग पुरोहित हैं।
यीशु एक उत्तम वाचा के जामिन ठहरे। बहुत से पुरोहित बनते आए थे, इसका कारण यह था कि मौत उन्हें रहने नहीं देती थी, लेकिन यह युगान युग है इस कारण यीशु का पुरोहितपन अटल है। इसलिए जो उनके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वे उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकते हैं क्योंकि वे उनके लिए विनती करने के लिए हमेशा जीवित हैं। इसलिए ऐसा ही महायाजक या पुरोहित हमारे योग्य था जो पवित्र, निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया हो, और उन महापुरोहितों के समान उन्हें आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने अपराधों और फिर लोगों के अपराधों के लिए बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि यीशु ने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया। क्योंकि नियम शास्त्र तो कमजोर मनुष्यों को महापुरोहित नियुक्त करता है, परंतु उस शपथ का वचन जो नियम शास्त्र के बाद खाया गया उस बेटे को नियुक्त करता है जो युगान युग के लिए सिद्ध किए गए हैं। इब्रानियों अध्याय 8। अब जो बातें हम कर रहे हैं उनमें से सबसे खास बात यह है कि हमारा ऐसा प्रधान पुरोहित है जो स्वर्ग में महामहिम के सिंहासन पर अधिकार के साथ है और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं किंतु प्रभु ने खड़ा किया था। क्योंकि हर एक प्रधान पुरोहित भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। इस कारण जरूर है कि उसके पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी पुरोहित न होता, इसलिए कि नियम शास्त्र के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं, जो स्वर्ग की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था, उसे यह चेतावनी मिली कि ध्यान से जो नमूना उसे पहाड़ पर दिखाया गया था उसी के अनुसार सब कुछ बनाए। परंतु यीशु को उसकी सेवकाई से बढ़कर सेवा मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा के मध्यस्थ ठहरे, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। क्योंकि यदि वह पहली वाचा बिना किसी खोट और कमी की होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता, किंतु वह उन पर दोष लगाकर कहता है कि
प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। ये उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पूर्वजों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा में बने नहीं रहे और मैंने उनका ख्याल न रखा। फिर प्रभु कहते हैं कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके आत्मा पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे, और हर एक अपने देशवासी को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तुम प्रभु को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनकी बुराई के विषय में दयावंत होऊंगा और उनकी बुराई को फिर याद न करूंगा।
नई वाचा की स्थापना से उन्होंने प्रथम वाचा को रद्द कर दिया, और जो वस्तु पुरानी और कमजोर हो जाती है उसका मिट जाना जरूरी है। इब्रानियों अध्याय 9। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे, और ऐसा पवित्र स्थान जो इस दुनिया का था, इसमें एक तंबू था। तंबू में पहले दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थीं, वह पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा पर्दे के पीछे वो तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर से सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल निकल आए थे, और वाचा की पट्टियां थी। संदूक के ऊपर दोनों तेज से भरे हुए करूब थे जो प्रायश्चित के ढक्कन पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। जब ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी तब पहले तंबू में तो पुरोहित कभी भी प्रवेश करके सेवा के काम निभाते रहे, परंतु दूसरे में केवल प्रधान पुरोहित वर्ष भर में एक ही बार जाता था। वहां वे खून लेकर जाता था जिसे वे अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता था। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू और यह जो कुछ दर्शाता है खड़ा है, तब तक महापवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। और यह तंबू तो वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक शुद्ध नहीं हो सकते, इसलिए कि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं जो नई वाचा के आने तक थे। लेकिन मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का प्रधान पुरोहित होकर आए, और उन्होंने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस दुनिया का नहीं, और ना ही जानवरों के खून से, किंतु अपने ही खून के द्वारा एक ही बार हमारे लिए अनंत आजादी प्राप्त करके पवित्र स्थान में प्रवेश किया। क्योंकि जब जानवरों का खून और उनकी राख अशुद्ध लोगों पर छिड़के जाने से बाहरी रूप से शुद्ध किए जाते हैं, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निष्कलंक चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से और ज्यादा क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि हम जीवित परमेश्वर की सेवा करें। इसी कारण वह नई वाचा के मध्यस्थ हैं, ताकि उस मौत के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से आजादी पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग वायदे के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। क्योंकि जहां वसीयतनामा तैयार किया गया, वहां वसीयतनामा बनाने वाले की मौत को समझ लेना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसा वसीयतनामा मरने पर ही अमल में आता है, और जब तक वसीयतनामा बनाने वाला जिंदा रहता है तब तक वह काम का नहीं होता। इसलिए पहली वाचा भी बिना खून के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को नियम शास्त्र की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने जानवरों का खून लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस किताब पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा
कि ये उस वाचा का खून है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है।
और इसी तरह से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर खून छिड़का। नियम शास्त्र के अनुसार प्राय सब वस्तुएं खून के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। बिना खून बहाए गुनाहों की माफी नहीं है, इसलिए जरूरी है कि स्वर्ग की चीजों के प्रतिरूप इन बलिदानों द्वारा शुद्ध किए जाएं। परंतु स्वर्ग में की वस्तुएं इनसे भी उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग में ही प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने मौजूद हों। ये नहीं कि वे अपने आप को बार बार चढ़ाएं, जैसा कि प्रधान पुरोहित प्रतिवर्ष कुर्बानियों का खून लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता था। नहीं तो दुनिया की शुरुआत से लेकर यीशु को बार बार दुख उठाना पड़ता, लेकिन अब युग के आखिर में वे एक बार प्रकट हुए हैं, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा गुनाहों की सजा को उठा लें। जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद इंसाफ का होना ठहराया गया है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के गुनाहों की सजा को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुए। जो लोग उनका इंतजार करते हैं, उन्हें सजा मुक्ति के बाद की आशीषों को देने के लिए वो बादलों में दिखाई देंगे। इब्रानियों अध्याय 10। क्योंकि नियम शास्त्र जिसमें आने वाली अच्छी चीजों की छाया है, लेकिन उनकी असलियत नहीं, इसलिए उन एक ही तरह के बलिदानों के द्वारा जो हर साल चढ़ाए जाते हैं, भक्ति करने वालों को बिल्कुल पूरी शुद्धता नहीं दे सकते। यदि ऐसा हो सकता तो उनका चढ़ाना बंद क्यों हो जाता? भक्ति करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें दोषी ना ठहराता, लेकिन उनके द्वारा हर साल पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि असंभव है कि जानवरों का खून पापों को दूर करे। इसी कारण वे जगत में आते समय कहते हैं,
बलिदान और भेंट आपने ना चाही, लेकिन मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से आप खुश नहीं हुए। तब मैंने कहा, देखो मैं आ गया हूं, पवित्र वचन में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी करूं।
वह कहते हैं कि ना आपने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे खुश हुए, यद्यपि ये बलिदान तो नियम शास्त्र के अनुसार चढ़ाए जाते थे। वह यह भी कहते हैं,
देखिए मैं आ गया हूं ताकि आपकी इच्छा पूरी करूं।
वो पहले को हटा देते हैं ताकि दूसरे को उसकी जगह लाया जा सके। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं, और हर एक पुरोहित खड़े होकर हर दिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो गुनाहों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। परंतु ये तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठे, और उसी समय से वो इसका इंतजार कर रहे हैं कि उनके दुश्मन उनके पांव की चौकी बने, क्योंकि यीशु ने एक ही बलिदान के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए शुद्ध कर दिया है। पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है कि
प्रभु कहते हैं कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो यह है कि मैं अपने नियमों को उनके मन पर लिखूंगा और मैं उनके मन में डालूंगा।
फिर वो ये कहते हैं,
मैं उनके अपराधों को और उनके अधर्म के कामों को कभी याद न करूंगा।
जब इनकी माफी हो गई है तो फिर पाप का बलिदान न रहा। इसलिए हे भाई बहनों, जबकि हमें यीशु के खून के द्वारा उस नए और जीवित रास्ते से पवित्र जगह में दाखिल होने की हिम्मत हो गई है, जो यीशु ने पर्दे अर्थात अपनी देह में से होकर हमारे लिए खोल दिया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान मध्यस्थ है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे ईमान के साथ और विवेक के कचोटते रहने को दूर करने के लिए मन पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के पास जाएं और अपनी आशा के अंगीकार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वायदा किया है वे सच्चे हैं, और प्रेम और भले कामों में दूसरों को बढ़ाने के लिए एक दूसरे का ध्यान रखा करो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो जैसे कि बहुत से लोग करते हैं, लेकिन एक दूसरे को समझाते रहो और जैसे जैसे उस दिन को पास आते देखो वैसे वैसे और भी अधिक ये किया करो, क्योंकि सच्चाई की पहचान हासिल करने के बाद यदि हम जानबूझकर गुनाह करते रहें तो गुनाहों के लिए फिर कोई कुर्बानी बाकी नहीं। हाँ, दंड की एक भयानक प्रतीक्षा और आग का जलना बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगी। जबकि मूसा की व्यवस्था का नाम मानने वाला दो या तीन जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह और कितनी भारी सजा के लायक ठहरेगा जिसने परमेश्वर के बेटे को पांव से रोंदा और वाचा के खून को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं जिन्होंने कहा,
बदला लेना मेरा काम है, मैं ही दंड दूंगा,
और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का इंसाफ करेंगे। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। उन पहले दिनों को याद करो जब तुम सच्चाई को जानने की वजह से दुखों में भी मजबूत रहे। कुछ तो बदनामी और सताव सहते हुए तमाशा बने और कुछ इस तरह कि तुम उनके साजी हुए जिनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और हमेशा ठहरने वाली दौलत है। इसलिए अपना साहस ना छोड़ो, क्योंकि उसका परिणाम बड़ा होगा। तुम्हें सब्र रखना जरूरी है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे खुश ना होगा। हम उन लोगों की तरह नहीं हैं जो विश्वास रखना छोड़ देने की वजह से वापस बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन विश्वास में बने रहेंगे ताकि उद्धार की आशीष में बने रहें। इब्रानियों अध्याय 11। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का आश्वासन और अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि इसी के द्वारा पूर्वजों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी दुनिया की रचना परमेश्वर के वचन से हुई है, यह नहीं कि जो कुछ दिखाई देता है वह देखी हुई चीजों से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम कुर्बानी परमेश्वर के लिए चढ़ाई और उसी के द्वारा उसके विश्वासी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के बारे में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मौत को ना देखे, और उसका पता नहीं चला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसके विषय में यह कहा गया था कि उसने परमेश्वर को खुश किया है। विश्वास बिना उन्हें खुश करना असंभव है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह हैं और अपने चाहने वालों को जवाब देते हैं। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के बारे में जो उस समय दिखाई नहीं देती थीं, परमेश्वर से चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने परिवार के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने दुनिया को आरोपी ठहराया और उस पद का वारिस हुआ जो विश्वास से है। विश्वास ही से अब्राहम को जब बुलाया गया तो वह आज्ञा मानकर ऐसी जगह चल पड़ा जिसे विरासत में लेने वाला था, और यह न जानते हुए भी कि कहां जा रहा है वो चल पड़ा। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेशी होकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वो उस स्थिर नींव वाले नगर का इंतजार करता था जिसके रचने वाले और बनाने वाले परमेश्वर हैं। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की ताकत पाई, क्योंकि उसने वायदा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरे हुए के समान था, आकाश के तारों और समुद्र तट की बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। ये सब विश्वास की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं ना पाईं, लेकिन उन्हें दूर से देखकर खुश हुए और मान लिया कि हम इस दुनिया में परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसा कहते हैं वो साफ तौर पर प्रकट करते हैं कि वह स्वदेश की चाहत रखते हैं, और जिस देश से वो निकल आए थे यदि उसके विषय में सोचते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, परंतु वो एक उत्तम अर्थात स्वर्गिक देश की चाह रखते हैं। इसलिए परमेश्वर उन लोगों के परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं शर्माते, क्योंकि उन्होंने उन लोगों के लिए एक नगर तैयार किया है। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने वायदों को सच माना था, और जिससे ये कहा गया था कि
इसहाक से तुम्हारा वंश कहलाएगा,
वो अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जी लाएं। इसलिए उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर उसने इसहाक को फिर पा लिया। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों बेटों में से एक एक को आशीष दी, और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर उपासना की। विश्वास ही से यूसुफ ने अपनी मौत के समय इसराइलियों के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के बारे में आज्ञा दी। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है, और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। विश्वास ही से मूसा ने बड़े हो जाने पर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे बुराई में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को उसने मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थीं। विश्वास ही से उसने राजा के गुस्से की परवाह ना करते हुए मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ विश्वास में बना रहा। विश्वास ही से उसने फसा और खून छिड़कने की विधि मानी, ताकि पहलौठों का नाश करने वाला इसराइलियों पर हाथ ना डाले। विश्वास ही से इसराइली लाल समुन्द्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी जमीन पर से, परंतु जब मिस्रियों ने वैसा ही करने की कोशिश की तो सब डूब मरे थे। विश्वास ही से 7 दिन तक चक्कर लगाने के बाद यरीहो की शहरपनाह गिर पड़ी। विश्वास ही से रहाब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को सुरक्षा दी थी। अब और क्या कहूँ, क्योंकि अभी समय नहीं है कि गिदोन का, बराक का, शिमशोन का, यफ्ता का, दाऊद का, शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, सही काम किए, प्रतिज्ञा की हुई चीजें प्राप्त की, शेरों के मुंह बंद किए, आग की लपटों को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, कमजोरी में बलवंत हुए, लड़ाई में बहादुर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, महिलाओं ने अपने मरे हुओं को फिर जिंदा पाया, बहुत से मार खाते खाते मर भी गए और आजादी ना चाही, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, उन पर पथराव हुआ, वे आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे गरीबी में और कलेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, वे जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके लायक न था, और इन सभी ने विश्वास के द्वारा अच्छी गवाही तो पाई, लेकिन तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक बेहतर बात ठहराई थी कि वह हमारे बगैर सिद्ध ना किए जाएं। इब्रानियों अध्याय 12। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक बोझ को और उस गुनाह को जो हमें आसानी से जाल में फंसाता है दूर करें, और वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें, और विश्वास की शुरुआत करने वाले और मजबूत करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिन्होंने उस खुशी के लिए जो उनके आगे रखी थी शर्म की कुछ परवाह ना करके क्रूस का कष्ट सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठे। इसलिए उन पर ध्यान करो जिन्होंने अपने विरोध में गुनेगारों की इतनी दुश्मनी सहली कि तुम निराश होकर हिम्मत ना छोड़ दो। तुमने गुनाह से लड़ते हुए उससे ऐसा मुकाबला नहीं किया कि तुम्हारा खून बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको बेटों की तरह दिया जाता है भूल गए हो कि
हे मेरे बेटे, प्रभु की दांत डपट को तुच्छ न जानो, और जब वो तुम्हें घुड़के तो धीरज ना छोड़ना, क्योंकि प्रभु जिससे प्यार करते हैं उसको डांटते डपटते भी हैं, और जिसे बेटा बना लेते हैं उसको छड़ी भी लगाते हैं।
तुम दुख को डांट फटकार समझकर सहलो, परमेश्वर तुम्हें बेटा बेटी जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करते हैं। वे कौन सा बेटा बेटी है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो डांट डपट जिसके हिस्सेदार सब हुए हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम बेटा बेटी नहीं पर वे विचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे संसारिक पिता भी हमें डांटा फटकारा करते थे और हम उन्हें आदर देते थे, तो क्या हम आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें जिससे जीते रहें? शारीरिक पिता तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए अनुशासन करते थे, परंतु परमेश्वर तो हमारे फायदे के लिए करते हैं कि हम भी उनकी पवित्रता के हिस्सेदार हो जाएं। इन दिनों में हर प्रकार की डांट फटकार आनंद की नहीं परंतु शोक ही की बात दिखाई देती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ सही जीवन जीने का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों और कमजोर घुटनों को सीधे करो और अपने पांवों के लिए सीधे रास्ते बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए परंतु ठीक हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को बिल्कुल ना देखेगा, और ध्यान से देखते रहो ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर की कृपा से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर दुख दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव की तरह टेढ़ा हो जिसने एक निवाले के बदले अपने पहलौटे होने का पद बेच डाला। तुम जानते तो हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो वो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर चाहने पर भी मन बदलाव का अवसर उसे ना मिला। जब परमेश्वर ने सीनाई पहाड़ पर नियम शास्त्र दिया था, उस समय जलती आग, अंधेरा, काली घटा और बवंडर था। ऐसे पहाड़ के पास तुम नहीं आए हो, ना ही तुमने बिगुल किसी आवाज में डरावना संदेश सुना कि तुम्हें परमेश्वर की दुहाई देनी पड़ी हो कि वह तुमसे बातें ना करें, क्योंकि वह उस आज्ञा को ना सह सके कि
यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उसे पथरवाह किया जाए।
और वो दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा,
मैं बहुत डरता और कांपता हूँ।
परंतु तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गिक यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौटों की साधारण सभा और चर्च या जिन लोगों के नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और मुक्ति पाए हुए उन लोगों की आत्माओं के पास जिन्हें निर्दोष ठहराया गया और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबिल के खून से उत्तम बातें कहता है, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग यदि पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़ कर ना बच सके तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले की अनसुनी करके कैसे बच सकेंगे। उस समय तो उनके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, परंतु अब परमेश्वर ने यह वादा किया है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। ये वाक्या एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वो बनाई हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं आभारी हों और उस मौके को हाथ से न जाने दें जिसके द्वारा हम भक्ति और डर सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वे खुश होते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर भस्म करने वाली आग हैं। इब्रानियों अध्याय 13। भाईचारे का प्यार बना रहे, मेहमान नवाजी करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की आवभगत की है। कैदियों का ऐसा ध्यान रखो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद में हो। जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनका भी यह समझकर ध्यान रखा करो कि हमारी भी देह है। विवाह सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का इंसाफ करेंगे। तुम्हारा स्वभाव बिना लालच का हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि परमेश्वर ने आप ही कहा है,
मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुम्हें त्यागूंगा।
इसलिए हम बिना झिझक के कहते हैं कि प्रभु मेरे सहायक हैं, मैं ना डरूंगा, इंसान मेरा क्या कर सकता है। जो तुम्हारे अगुवे हैं और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें याद रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का नतीजा देखकर उनके विश्वास की नकल करो। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक से हैं। अनेक प्रकार के और ऊपरी उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से स्थिर रहना भला है, ना कि उन खाने की चीजों से जिससे काम रखने वालों को कुछ फायदा ना हुआ। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का हक उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन जानवरों का खून महापुरोहित पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है उन जानवरों की देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही खून के द्वारा पवित्र करने के लिए यरूशलेम के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उनकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए यहूदी मत के बाहर उनके पास निकल चलें, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला शहर नहीं, वरन हम एक आने वाले शहर की ताक में हैं। इसलिए हम यीशु के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उनके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए हमेशा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से खुश होते हैं। अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वो उन लोगों की तरह तुम्हारे लिए जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा कि वो ये काम आनंद से करें ना कि दुख से, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ फायदा नहीं। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में आदर के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। और इसके करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ कि मैं जल्दी तुम्हारे पास फिर आ सकूं। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों के महान रखवाले हैं सनातन वाचा के खून के गुण से मरे हुओं में से जिला कर ले आए, तुम्हें हर एक अच्छी बात में स्थिर करें जिससे तुम उनकी इच्छा पूरी करो। जो कुछ उनको पसंद है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करें, जिनकी बड़ाई युगान युग होती रहे, ऐसा ही हो। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि इस शिक्षा की बातों को सहलो, क्योंकि मैंने तुम्हें थोड़ा सा ही लिखा है। तुम ये जान लो कि तिमोथियस हमारा भाई छूट गया है, और यदि वह जल्द आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे भेंट करूंगा। अपने सब अगुओं और सब पवित्र लोगों को सलाम कहो। इटली वाले तुम्हें सलाम कहते हैं। तुम सब पर कृपा बनी रहे, ऐसा ही हो।